श्रोताओं नमस्कार। रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन में आप सभी का स्वागत है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक है
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। एक धारणा मिथ्या है जो हो चुकी जन आम, खाकर मुझे ना होते मोटे मत करना बदनाम। श्रोताओ नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन लेकर। रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन की आज की ये जो कड़ी है ये है 11वीं कड़ी। इस कड़ी में हम सबसे पहले आपको आज का विषय बता दें। हमारा आज का विषय है भोज्य बीज व विधायन के लिए आलू का भंडारण एवं प्रसंस्कृत उत्पाद। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे डॉक्टर ब्रजेश सिंह। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कड़ी को भी सुनना है क्योंकि इस कड़ी में ही छिपा है हमारे आज का प्रश्न जो कि कार्यक्रम के अंत में हम आपसे पूछेंगे और उसका उत्तर आपको भेजना होता है एक सप्ताह के अंदर अंदर। पता भी हम आपको बता दें और कार्यक्रम के अंत में भी पता बताएंगे। पता है डॉक्टर एन के पांडे, संभागाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला एक। और ये तो आप जानते ही हैं कि रेडियो पाठशाला की जब सब कड़ियां प्रसारित हो जाएंगी उसके बाद जो विजेता होगा उसको CPRI द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो हम आज की अपनी जो बातचीत है, अपनी जो चर्चा है वो शुरू करते हैं। डॉक्टर ब्रजेश सिंह, हमारी इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद जी।
आज का हमारा विषय है भुजे बीज व विधायन आलू के बारे में
जी।
सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे देश में आलू के भंडारण की आवश्यकता क्यों है।
ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हमारे देश में जो आलू की पैदावार होती है उसका 90% भाग मैदानी इलाकों से आता है
जी।
और इस पूरे इलाके में आलू की जो पैदावार होती है वो फरवरी मार्च के आसपास होती है और जो ताजे आलू हैं वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक आपको अवेलेबल हो सकते हैं। जबकि आलू ऐसा खाद्य है जिसको पूरे साल खाया जाता है, तो पूरे साल में आलू की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए इसके भंडारण की अति आवश्यकता होती है।
डॉक्टर ब्रजेश, बीज आलू की जब हम बात करते हैं तो इसके भंडारण की विधि क्या है और क्या यही विधि खाने योग्य आलुओं के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है क्या?
सबसे पहले मैं बीज आलू की बात करता हूँ। बीज आलू को अगर स्वस्थ रूप में रखना है, क्योंकि बीज आलू की देखिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो करीब 7 से 8 महीने आपको स्टोर करना पड़ता है उसको, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं हमारे यहाँ। और इन कोल्ड स्टोरेज या जिसको हिंदी में शीत भंडार बोलते हैं, शीत भंडारों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बीज आलू को रखा जाता है। उससे आलू स्वस्थ बना रहता है और इसमें कोई अंकुरण भी नहीं आता है। भोज्य आलू में जो ये शीत भंडारण 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के हैं ये बहुत अच्छे भोज्य के लिए नहीं माने जाते हैं। उसका कारण भी मैं बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को। जब हम शीत भंडारण में इतने कम तापमान पर आलू को रखते हैं तो उसमें शर्करा या सुगर्स का जमाव बढ़ जाता है और उस कारण से कुछ समय बाद आलू मीठे होने
मीठे हो जाते हैं
जी। और ये मीठे आलू जो है खाने लायक बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हमारे संस्थान ने एक और तकनीकी का विकास किया है जिसमें हम आलू को बढ़ाकर 10 से 12 डिग्री तापमान पर कोल्ड स्टोरेज में ही रखते हैं। इसमें एक ही दिक्कत आती है कि अंकुरण पहले होने लगते हैं और अंकुरण को रोकने के लिए कुछ उपचार करना पड़ता है। एक केमिकल है CIPC के नाम से, उससे इसको उपचार करके हम फिर भली भांति आलू का भंडारण कर पाते हैं और उसको भोज्य आलू की तरह उपयोग करते हैं।
बहुत ही बढ़िया बात आपने डॉक्टर ब्रजेश बताई है, लेकिन इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विधायन योग्य जो आलू है उनको शीत भंडार में किस तापमान पर भंडारित करना चाहिए
जी। ये भी आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जितने भी विधायन या प्रसंस्करण वाले आलू हैं इनको भी 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही रखना उचित होता है।
इसके बारे में भी हमारे जो आलू उत्पादक भाई हैं वो जान गए होंगे कि जो विधायन योग्य आलू है उसको 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रखना पड़ेगा
जी। बिल्कुल
डॉक्टर ब्रजेश, जैसा कि आपने बताया कि बीज आलुओं के लिए शीत भंडारण बहुत जरूरी है
जी।
लेकिन हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है
बिल्कुल,
और यहाँ जरूरी नहीं कि सब जगह शीत भंडार
गृह बिल्कुल होंगे। सही बात आपने कही।
तो वहाँ हमारे जो किसान भाई हैं बीज आलू को कैसे रख सकते हैं
जी? देखिए, जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ज्यादातर जब आलू की खुदाई होती है उसके बाद हमारा शीतकाल आरंभ हो जाता है। आलू एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको ठंड में ही रखना पड़ता है, तो जब यहाँ ईश्वर की देन से पहले से ही शीत भंडार की तरह का ही आपको तापमान मिल गया, तो वहाँ पे आलू बिना शीत भंडारण के भी आप रख सकते हैं। और इसके लिए खाली हम ये सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि जो है एक विस्तृत प्रकाश बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा उजाला हो, थोड़ा सा अंधेरा हो, ऐसी किसी जगह का चुनाव करके आलुओं का छिलका पकने के बाद उसको 3% बोरिक एसिड से ट्रीट करके सुखा के, और उसके बाद फिर इस विस्तृत प्रकाश वाले कमरे में उसको फैला के रख ले। इस तरह से बीज बिल्कुल स्वस्थ बना रहेगा अगली बुआई तक।
इसके अतिरिक्त जो खाने वाले आलू हैं उनके लिए भी क्या शीत भंडारण के अतिरिक्त कोई और तरीका है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे विस्तार से?
बिल्कुल, ये जरूर मैं बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसमें हर तरह के कृषक हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। खासकर मैं छोटे किसानों को इस बारे में बताना चाहूंगा कि शीत भंडारण तो एक ऑप्शन है, लेकिन वहाँ क्योंकि उसका एक किराया भी पड़ता है और हर किसान की ऐसी स्थिति नहीं होती है कि उस किराए को दे सके, तो ऐसी स्थिति में वो खाने वाला जो आलू है उसको 2 से 3 महीने तक अपने घरों में या खलिहान में ही जो है ढेर लगाकर भंडारित कर सकते हैं। और इसकी एक बड़ी आसान सी विधि का ईजाद किया है, और इसमें क्या होता है, आलू का छिलका पकने के बाद उनको ढेर लगाकर और फिर चारों तरफ से करीब 1 फीट मोटी पुआल से ढक के रखते हैं। और इससे फायदा ये होगा कि जो एक तुरंत का, जब आलू की खुदाई के टाइम पे आलू का रेट अच्छा नहीं होता है, और जब 2-3 माह उसको रख पाएंगे अगर किसान भाई, उस समय मार्केट में रेट भी अच्छा हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आलू को वो निकाल के बाजार में बेच सकते।
इसके अतिरिक्त जो आलू है वो तो जैसे कि आपने बताया और सब जानते ही हैं कि साल भर आलू उपलब्ध रहता है
जी,
तो आलू की बढ़ती पैदावार के मद्देनजर कृपया इसके प्रसंस्करण पर भी प्रकाश डालें और ये भी बताएं आप हमारे श्रोताओं को कि आलूओं से किस प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
जी, हमारे देश में आलू निरंतर बढ़ता जा रहा है, किसानों में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित होता जा रहा है, उससे हो ये रहा है कि उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर उत्पादन के साथ साथ अगर उसका सही उपयोग ना हो तो आलुओं के दाम उनको अच्छे नहीं मिल पाते हैं, इसलिए प्रसंस्करण एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज की डेट में हम पूरे देश में जितनी पैदावार हो रही है उसका लगभग 7.5% प्रसंस्करण कर रहे हैं पूरी पैदावार का। और अभी तक मेनली जैसे चिप्स हुए, फ्रेंच फ्राइज करके एक प्रोडक्ट है, या जो है कुछ मात्रा में सुखाए हुए चिप्स या पापड़ बनाए जाते हैं
जो कि लोकप्रिय भी बहुत ज्यादा है,
जो लोकप्रिय
सभी पसंद करते हैं।
तो इस तरह के प्रोडक्ट्स तो बन रहे हैं, लेकिन संभावना बहुत है आगे, और आलू से बहुत तरह के उत्पाद बन सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 3 तरह के कैटेगरी में इनको उत्पादों को बांटते हैं। सबसे पहला तो है फ्राइड उत्पाद, फ्राइड मतलब तले हुए उत्पाद, जिसमें चिप्स हुए, फ्रेंच फ्राइज हुए, इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं। दूसरा एक और बहुत कॉमन है डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स या सुखाए हुए पदार्थ हैं, गांव में भी बहुत प्रचलित है, जैसे सुखाए हुए चिप्स बना लिए, पापड़ बना लिया। इसके अलावा एक प्रोडक्ट है आलू का फ्लेक्स, या आलू से आटा बनाना या स्टार्च बनाना, ये सारे सुखाए हुए पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। और एक और तरह का जो है प्रोडक्ट जो अभी बहुत प्रचलित नहीं हुआ है, लेकिन डिब्बा बंदी जिसको बोलते हैं, तो उसमें छोटे साइज के बेबी पोटैटोज या छोटे टुकड़ों को डिब्बों में पैक करके, ये मेनली जैसे हमारे सेनाओं में या आर्मी में जो डिफिकल्ट एरियाज हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छे पदार्थ होते हैं। तो ये इस तरह के कुछ पदार्थ हैं जो आलू से बड़े भलीभांति बनाए और बेचे जा सकते हैं।
डॉक्टर ब्रजेश, आपने आलू के उत्पाद जो विभिन्न तरीके से बनाए जा सकते हैं उसके बारे में बहुत ही बढ़िया बातें बताई हैं, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि आलू के प्रसंस्करण हेतु उनमें कुछ गुणों का होना भी आवश्यक है, और क्या इसके लिए किन्हीं विशेष किस्मों का उपयोग करना चाहिए हमारे आलू उत्पादक भाइयों को?
जी देखिए, ये बहुत जरूरी जानकारी है जो कृषकों को होनी आवश्यक है। पहली तो ये है कि जो बाजार में जो भी आलू मिलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनका प्रसंस्करण कर सकें। अगर आपने आलू को प्रसंस्करण करके कोई उत्पाद बनाना है तो उसमें कुछ ना कुछ बातें होनी आवश्यक हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि आलू देखने में कैसा है। टेढ़े मेढ़े आलू होंगे तो वो प्रसंस्करण में नहीं जाएंगे। आलू को गोल या गोल से अंडाकार या जैसे फ्रेंच फ्राइज जैसे प्रोडक्ट के लिए लंबे आलू चाहिए,
दिखने में
आकर्षक होने चाहिए, और एक जिस तरह का पदार्थ बनाना है उसके हिसाब से होने चाहिए। दूसरा ये है, एक और बड़ी इसमें जरूरी बात है कि आलू की आंखें कैसी हैं। आंखें हमेशा उथली होनी चाहिए, बहुत अगर गहरी होंगी तो उसमें छिलने के दौरान काफी नुकसान हो जाता है। इसके अलावा आलू के अंदर कुछ गुणों का होना बड़ा आवश्यक होता है। सबसे पहला इसमें जो मैं बोलूंगा वो है शुष्क पदार्थ, ये हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। एक हमारा मानक है कि 20% या 20% से ज्यादा होना चाहिए। आलू में शर्करा की मात्रा जितनी कम होगी उससे उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। और इसके लिए भी एक मानक है 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से कम होना चाहिए शुगर, तभी उसका जो है अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। इन्हीं सारी गुणों को देखते हुए हमारे संस्थान ने कुछ वैरायटीज़ या किस्मों का विकास किया है जो प्रसंस्करण के लिए ही उपयोगी हैं। इनमें चिप्सोना का नाम दिया हुआ है, कुफरी चिप्सोना 1 से लेकर कुफरी चिप्सोना 4 तक 4 वैरायटीज़ हैं, और उसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ के लिए एक कुफरी फ्राइसोना करके वैरायटी है, और एक पहाड़ों में प्रोसेसिंग के लायक वैरायटी हमने कुफरी हिमसोना निकाली हुई है
जी।
तो ये ऐसी किस्में हैं जिनको कृषक भाई उगा सकते हैं और फाइनली इनको जो है प्रसंस्करण के लिए ही बेच के अधिक लाभ कमा सकते हैं।
प्रसंस्करण के लिए सबसे लोकप्रिय या बहुत जिसे लोग पसंद करते हैं चिप्स
जी, बिल्कुल।
तो डॉक्टर ब्रजेश आपसे एक फेवर चाहेंगे, हमारे जितने भी कृषक बंधु हैं उनको आलू के चिप्स बनाने की विधि आप यदि बता दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और क्या हमारी जो कृषक महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो भी इसे बना सकती हैं घर पर?
जी, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, सबसे पहले तो ये है, चिप्स बनाने के लिए एक साधारण तरीका है, उसके लिए सबसे पहले आलू को छीलना पड़ता है और फिर उनके चिप्स काटनी पड़ती हैं। उसका जो मोटाई होती है वो 1.5 से 2 मिलीमीटर के बीच की होती है। इसके बाद इनको गर्म पानी में उपचारित करके और फिर जो है फाइनली सुखा के, मतलब सरफेस सुखा के इसकी, और उसके बाद इनको 180 डिग्री तापमान पर फ्राई किया जाता है। इसके अलावा अगर सुखाए हुए चिप्स बनाने हैं तो गर्म पानी से उपचारित करके फिर इनको धूप में या ओवन में सुखाया जा सकता है।
अच्छा।
ये तो हुआ चिप्स बनाने का तरीका। और इसके अलावा हमने अपने एक जो छोटे स्तर पर अगर किसी ने प्रोसेसिंग करनी है, प्रसंस्करण करना है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या महिला मंडल के थ्रू करना चाहें, तो उनके लिए एक हमने मॉडल तैयार किया है। और हमारा शिमला से करीब 16 किलोमीटर दूर कुफरी में एक स्टेशन है और उस स्टेशन पे इस मॉडल को हम चला रहे हैं और वहाँ पे चिप्स बना के हम बेच भी रहे हैं
जी।
तो ये इसीलिए हमने बनाया है कि जितने भी हमारे कृषक बंधु या सेल्फ हेल्प ग्रुप या अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो अगर इस मॉडल को देखना चाहें, अपनाना चाहें, तो वहाँ पहुँच के वहाँ देख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं संस्थान में। हम उनको उसके ऊपर थोड़ा सा उनको बताना भी चाहेंगे, ट्रेनिंग भी देना चाहेंगे। स्कोप बहुत है और बस आगे आने की
जरूरत है। तो डॉक्टर ब्रजेश सिंह, आज आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी इस रेडियो पाठशाला में हमारे कृषक बंधुओं को दी। ये सब जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, अब आज का प्रश्न, हमारी आज की इस 11वीं कड़ी का प्रश्न है, विधायन योग्य आलू को शीत भंडार में किस तापमान पर भंडारित करना चाहिए? एक बार हम फिर दोहराते हैं, विधायन योग्य आलू को शीत भंडार में किस तापमान पर भंडारित करना चाहिए? प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा। यदि आपने ध्यान पूर्वक इस कड़ी को सुना होगा तो आपको इसका उत्तर जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से आप लिख करके भेज भी दीजिए, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका उत्तर बताए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। डॉक्टर एन के पांडे, संभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला 1, इस पते पर आप जल्दी से अपना उत्तर लिख करके भेज दीजिए, क्योंकि यदि आपका उत्तर सही होगा और आपका चयन हो जाता है तो उसमें CPRI द्वारा आपको सम्मानित भी किया जाएगा। हमारी रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगले सप्ताह एक बार फिर एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे थे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन।